शांति,
सुख शांति।
मीठे मीठे बाप दादा के, मीठे मीठे लाडले लाडले बहुत समय के पश्चात मिले हुए इस ईश्वरीय परिवार को देखते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। और आप सभी भी अवश्य ही अपने इतने विशाल परिवार को देख करके प्रसन्न होते होंगे, जो कि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों का बहुत बड़ा विशाल परिवार है। इतना बड़ा परिवार किसी का भी होता नहीं, तो स्वाभाविक है कि इतने विशाल परिवार के अंदर अनेकानेक आत्माएं और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक अभिनेता और अभिनेत्रियां जो कि इस बेहद के रंग मंच पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना स्वभाव, हर एक के अपने अपने संस्कार और हर एक ने अपनी अपनी रीति से अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के ऊपर चलने के लिए, पहुंचने के लिए लक्षणों को भी धारण किया है, कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो एक बात तो बहुत सरल सहज समझ में आती है और कोई भी ये बात समझ सकता है कि इतने बड़े परिवार के अंदर हम अपने जीवन को व्यतीत करें और हलचल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि हम देखते हैं कि एक छोटे से परिवार में, उसमें भी गुजराती में तो खास कहते हैं कि घर हो त्या वासण जरूर खखड़े, माना परिवार जहां पर है वहां बर्तन आपस में टकराते हैं और उसका आवास तो जरूर होता ही है। तो यहां पर भी इतना बड़ा बेहद का परिवार है तो हलचल तो आ ही जाती है। कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव के द्वारा, संस्कार के द्वारा, कभी कोई विघ्न रूप बनता, कभी कोई विघ्न रूप बनता, कभी किसके साथ हिसाब किताब, कभी किसके साथ हिसाब किताब, कभी कोई किसको दोष देता, कभी कोई किसको दोष देता, कभी कोई अपने को निर्दोष साबित करता तो कोई अपने को निर्दोष साबित करता। हर एक का रूप अलग, रंग अलग, हर एक की सुगंध गुणों की अलग, हर एक के अवगुणों की दुर्गंध भी अपनी। मतलब ये बहुत ही रंग रंगीला हमारा परिवार है और इस परिवार के अंदर उठने वाली जो भी बातें हैं, हमें बाबा ने उनके कारण तो बता ही दिए हैं और निवारण भी बता दिए हैं। आप सभी आशा करती हूं कि मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली आप रोज अवश्य सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो अन्य के द्वारा उनका सहयोग लेकर के भी आप अवश्य सुनते होंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली के अंदर हमारे जीवन के अंदर होने वाली प्रतिदिन की हलचल विविध प्रकार की, उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोष किसको देना है, निर्दोष कौन है, कैसे है और कैसे अपने को अचल स्थिति में लाना है, ये सारी बातें बाप दादा मुरलियों के अंदर बताते रहते हैं। परंतु फिर भी शॉर्ट में यदि हम उन हलचल के कारण को समझना चाहें, उस हलचल को समझना चाहें, तो हमें कुछ बातें जो कि रोज होती रहती हैं, परंतु फिर भी भूल जाती हैं, जैसे बाप दादा ने हमें अनेकानेक विस्मृतियां जो थी तो वो विस्मृतियों से मुक्त करके और हमें हमारी हर प्रकार की अनादि काल से लेकर आदि मध्य अंत की सभी स्मृतियां दिला दी। ऐसे हर प्रकार की हलचल के विषय में बाप दादा ने बताया और जो हम भूल जाते हैं वो भी हमें बाबा याद करा देते हैं कि हलचल होने का कारण क्या है। हलचल होना माना अपने निश्चय से थोड़ा अलग हो जाना, हलचल होना माना हमारी जो रूहानी नशे की स्थिति है उस स्थिति से थोड़ा नीचे आना, हलचल माना हमारी अवस्था जो कभी सुख का अनुभव करती है तो दुख का करने लगती, कभी हंसते हैं तो फिर रोने लग जाते, कभी बाबा को याद करते तो फिर कभी बाबा को भी और अन्य आत्माओं की भी फरियादें करने लग जाते। इस प्रकार हमारी जो पॉजिटिव स्थिति है, सकारात्मक स्थिति है, हकारात्मक स्थिति है, विधायक विधेयात्मक स्थिति है, उस स्थिति से हम नेगेटिव में आ जाते, नकारात्मक स्थिति को प्राप्त करते और फिर गुणों के बदले में अवगुण आ जाते, शक्तियों के बदले में कमजोरी आ जाती, समय को सफल करने के बजाय समय को व्यर्थ करना शुरू कर देते, पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव सोचने लग जाते, स्वयं के दोष को देखने के बजाय अन्य के दोषों पर ध्यान जाता, स्वयं को निर्दोष साबित करके दूसरे को दोषित सिद्ध करने की मनोवृत्ति बन जाती। इस प्रकार की कई प्रकार की स्थितियां और अवस्थाओं से सभी गुजरते रहते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ बैठे हुए में से कोई भी एक भी ऐसी व्यक्ति बैठी होगी जो कहे कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी हलचल नहीं आई है। कोई बैठा हुआ नहीं, क्योंकि हलचल तो आती ही है और यही हलचल हमारी अचल स्थिति को बनाने का आधार है। वो हमें अचल स्थिति में कैसे रहना उसके पाठ पढ़ाती है, उसकी शिक्षाएं देती है, उसकी शक्तियां भरती हैं, हमारे में गुण लाती हैं और हमें शक्तिशाली भी बनाती हैं। परंतु तब जब हम इस हलचल की परिस्थिति में उठने वाले जो भी घटनाएं, किस्से या जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यदि पॉजिटिव नहीं लेते तो फिर वो परिस्थितियां हमारा नुकसान हमें दिखाती हैं। और बाबा ने तो इतने सरल शब्दों में हमें कई बार भिन्न भिन्न मुरलियों के द्वारा बताया है कि बहुत छोटे छोटे शब्द हैं परिस्थितियों को हलचल में लाने के। या तो हम अगर और मगर करते, या फिर हम जो और तो करते, यानी अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे ऐसे होता, अगर ये बात ऐसे है तो ऐसे होता। मगर ये है, मगर ये होना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ, तो ये इसलिए उसलिए, वैसे तो ऐसे हम इन शब्दों का प्रयोग करके और हम अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं। हम अपनी स्थिति का जो थर्मोमीटर है वो हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, इन सभी ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल बातें बताई है कि कैसे हम अपनी अवस्था दूसरों के हाथ में रख देते हैं। हम प्रभु की कठपुतली नहीं बनते भाई। करण करावन हार स्वामी वो है, वो जैसे कराता है हम करते जाएं, वो जैसे चलावे हम चलते जाएं। लेकिन उसके बजाय क्या होता है, हमने अपनी डोर अनेक व्यक्तियों के हाथों में देके रखी हुई है, और जब अनेकों के हाथ में वो डोर आ गई तो जो जिस समय चाहे मुझे सुखी से दुखी बना दे, कोई भी ऐसी बात बता करके वो पल में मेरी सुख की स्थिति को बदल कर मुझे दुखी कर दे, मेरी खुशी की अवस्था को कोई ऐसा एक वाक्य बोलकर या एक चलन ऐसी चलकर या एक चाल ऐसी चलकर वो मुझे उदास कर दे, निराश कर दे, मेरी खुशी गायब कर दे, सिर्फ एक शब्द बोलकर वो मुझे ऐसा तीर मार दे जो बाबा की याद भी भूल जाए और अविनाशी बाबा की याद में रहने के बजाय हम अविनाशी उस तीर की चुभन को याद करते रहें, दुखी होते रहें, अशांत होते रहें, बेचैन होते रहें। और कभी कभी तो यहां तक नौबत आ जाती है कि उनके हाथ में हम अपनी स्थिति दे करके हम स्वयं के शत्रु बन जाते, स्वयं के वैरी बन जाते, और फिर उसका परिवर्तन जब तक हम अवस्था बिगाड़ने वाले की अवस्था न बिगाड़ें, जब तक हमें दुख देने वाले को हम दुखी न करें, जब तक हमको कटाक्ष बाण मारने वाले को हम ऐसे सामने कटाक्ष बाण न मारें, हमें रुलाने वाले को हम न रुलाएं, इस प्रकार के वैर की भावना के बीज अंदर में हम बोते जाते हैं, और जब तक वो मौका हमें मिले और वो घटना घटे तब तक उस बीज को पालना देते रहते हैं और उस वैर के वृक्ष को बड़ा बड़ा करते जाते हैं। और फिर जब मौका मिलता है तो हम वो बदला लेने के बाद ही आत्मसंतोष की सांस लेते हैं और संतुष्ट होते हैं, और तब ऐसा लगता है कि अब हम विजयी बने। परंतु विजय की ये परिभाषा नहीं, विजय की तो ये परिभाषा है कि शत्रु को भी शत्रु न माने और अपना मित्र माने, उनसे किसी भी प्रकार का वैर न ले, बदला न ले। उसने जो भी हमारे साथ किया उसकी जो भी सजा, जो भी बदला, जो कुछ भी करना है वो ऊपर वाला करेगा, या फिर हमारी ये शुभ भावना कि हम अपने शुद्ध और शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा उस आत्मा को अपनी गलती स्वयं महसूस हो और वो अपना स्व परिवर्तन करे, ताकि उसको भी धर्मराज की दरबार में जाना न पड़े, धर्मराज उसको भी सलाम करे ऐसी ऊंची भावना रखते हुए हम उनके प्रति भी अपने योग के वाइब्रेशन देवे। परंतु ना, ये करने का अभ्यास नहीं। अनेक जन्मों से माया ने या फिर स्वयं के बेभान में यही अभ्यास सबका पड़ा हुआ है कि जो हमारे साथ नेगेटिव करते हैं हम भी उनके सामने नेगेटिव होकर के युद्ध करते हैं। तो किसी भी नेगेटिव से हमें खुश नहीं होना है, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को देख करके हमें अप्रसन्नता नहीं करनी है। बस बाबा कहते हैं, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैंने भी तुम बच्चों को प्रेम दिया है, हम भी यही करें, हम सबको प्रेम करें, हम वही करें जो हरेक के मन को चैन मिले, शांति मिले, उनका व्यर्थ संकल्प न चले, उनको किसी भी प्रकार से अवगुण का सामना करने को मन न करे, किसी से वैर न ले, किसी से बदला न ले। परंतु ये सब करने के लिए हम एक ही बात सदैव याद रखनी पड़े कि मुझे तो बाप समान बनना है। परंतु उसमें भी हमारा बाबा के इस महावाक्य को लक्ष्य बनाकर और जितना भी सकारात्मक है, जितनी भी सकारात्मकता है, जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, उनमें हमारा निश्चय हो और हम उसमें चलें और उस चलने में हमारा विश्वास हो। ऐसे नहीं कि हम समझें जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, शमे ना वैर वैर थी, शमे वैर प्रेम थी। वैर वैर से शांत नहीं होता, लेकिन वैर जो है वो प्रेम से खत्म होता है। इसलिए हम स्वयं के भी स्नेही बने, जैसे बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर रहम खाओ, तो हम स्वयं के भी शत्रु न बने, स्वयं पर रहम करें, स्वयं को भी हम स्नेह करें ताकि वो किसी को दोष न दे, वो किसी का अवगुण न देखे, वो किसी से वैर न करे, वो किसी से बदला न ले, वो दूसरे को न देखे, खुद को देखे। तो मीठे मीठे बाप दादा ने तो बहुत सारी बातें हम बच्चों को धारणा की बता दी है। छोटी छोटी बातों का वर्णन कर करके बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया है। किस लिए तैयार किया? इसलिए तैयार किया है कि हमारी चलन और हमारा चेहरा ऐसा बन जाए जो हमारी चलन को देखकर उनको प्रश्न उठे देखने वाले को कि इनको ऐसा किसने बनाया, इनको ऐसा बनाने वाला कौन, और हमारे चेहरे की हर्षित मुखता किसका साक्षात्कार करावे, बाबा का और फरिश्तों का। हमारी चलन और चेहरा देखकर वो ये सोचने से मजबूर हो जाएं कि ये लोग कोई इस दुनिया के निवासी नहीं लगते हैं, ये जैसे कोई अलग लोग हैं। वैसे भी आप देखेंगे कई बाबा के बच्चे, कई अज्ञानियों के अनेक प्रकार की कैटेगरी, अनेक प्रकार के वर्गों के संगठन के बीच में या कोई ग्रुप में खड़े रहते हैं अपने इसी सफेद यूनिफॉर्म में, व्हाइट यूनिफॉर्म में, और अगर बाबा की याद में रूहानी नैन चेहरे पर वो मीठी मुस्कान दिव्यता की खड़ा रहना, बातचीत करना, उसमें हमारे दैवी गुणों की ईश्वरीय झलक, मस्तक पर वो रूहानी आत्मिक परमात्मिक फलक, और स्मृति और वृत्ति से निकलते हुए हमारे अपने परिवार की भातृत्व भावना की, विश्व बंधुत्व के भावना के जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस निकलते हों, और उस स्थिति में हम अगर कईयों के बीच में भी खड़े होते हैं तो दूर से देखने वालों को भी ये महसूस होता है कि ये कोई उस ग्रुप का लगता नहीं है, ये व्यक्ति कोई अलग है, उनको आकर्षण होती है हम इनके पास जाएं, हम इनके समीप जाएं, हम इनसे बात करें, हम इनको पूछें, हम इनके मुख से निकलने वाले दो शब्द सुने, हमारे ऊपर इनकी नजर जाए और उनकी नजरों से हमें आशीर्वाद मिले, वो हमें देखे तो देखता ही रह जाए, बार बार उसको देखने को मन करे, वो भले बातें किसी और से करे लेकिन उसका ध्यान जो है अपनी नजरों के द्वारा घड़ी घड़ी उस व्यक्ति की ओर जावे, और उसको मिले भी अगर वो रह न सके, ऐसा उसको आकर्षण होता है। और प्रैक्टिकल होता है और आकर के वो झुक ही जाते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता कि मैं कोई ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं या मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संतान हूं, लेकिन हमारी वो चलन, हमारा वो हर्षित मुख, चिंता मुक्त, बाबा की याद का वो मीठा चेहरा, हर्षित चेहरा उन्हें मजबूर करता है हमारे आगे आने के लिए, जिसमें उनका अहम टूटता है, देहभान टूटता है और वो नम्र बनकर, निरहंकारी बनकर हमारे आगे छोटे बच्चे की तरह दौड़ के चला आता है। वरना इस संसार के अंदर देह भान बहुत है, ईगो बहुत है, यहां तक कि हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी बाबा के बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय परिवार के बीच में हैं। कोई हमें बुलाए या ना बुलाए, मुझे सामने से प्रेम से बुलाना है, प्रेम से ओम शांति करना है, मुझे ये संकल्प नहीं आना चाहिए इसको मैं ओम शांति करूं, ये करते हैं क्या जो मैं करूं, पहले ये ओम शांति करे तो मैं उसको ओम शांति करूं। हम ओम शांति करने से भी इगोइस्ट हो जाते हैं। अरे परिवार के सदस्य हैं, वहां पर अभिमान की क्या बात आई, जहां मेरे हैं अपने हैं, चलो कोई बात से ऊंचाई नीचाई, कोई खिटपिट वाद विवाद हो भी जाए, वैचारिक मतभेद भी हो जाए, मनभेद भी हो जाए, हमारे पास बाबा ने ज्ञान के कितने हथियार दिए हैं, ज्ञान की कितनी हमारे पास बाबा ने दवाइयां दी हैं, ज्ञान की कितनी समझ दी है, कितनी हमें अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां दी है, इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने का अभ्यास होना चाहिए। तो हमने बार बार उपयोग करके उसको अपना नहीं बनाया, उस खजाने को अपना नहीं बनाया, उस गुणों को अपना नहीं बनाया, उन शक्तियों को अपना नहीं बनाया, हम उसके अधिकारी नहीं बने, इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है।